ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।
तो आज के 18 अक्टूबर के प्रभात जागृति में आप सबका स्वागत है। श्री चैतन्य महाप्रभु और राधा माधव की परम कृपा से हम सब एकत्र हुए हैं, इसलिए मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू यू। कुछ दिन पहले हमने एंड ऑफ लाइफ केयर के बारे में सुना। जब ये एंड ऑफ लाइफ केयर करने का मौका आपके सबके लिए है, श्याम कुंड प्रभु 13 अक्टूबर को उनको झटका आया और वो कोलकाता चले गए। उसके बाद में उनका स्थिति बहुत ख़राब हो गया, तो फिर गुरु महाराज से चर्चा करने के बाद में ये निर्णय लिया कि उनको वापस लाया जाए, क्योंकि लगता है उनका रिकवरी का कोई चांस नहीं है। 36 साल से मायापुर में ब्रह्मचारी बनकर रह रहे, मतलब आधे से अधिक जिंदगी तो मायापुर में गया, जवानी से बुढ़ापे तक। इसलिए आप सब लोगों को मेरी हार्दिक विनती है, हृदय से विनती है कि आप सब जाइए ऊपर और उनकी प्रार्थना कीजिए, उनसे बात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि वो सुनते हैं, लास्ट मोमेंट तक सुनते हैं, क्योंकि आत्मा कभी बहरी नहीं होती, आत्मा हमेशा सुनती है। और शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब व्यक्ति का गुजरने का समय आता है या वो गुजर जाता है, उस समय दुनिया की किसी भी चीज़ का उसको उपयोग नहीं होता है। मेडिकल नॉलेज, मेडिकल सपोर्ट, दवाई, या कोई उसका कांटेक्ट है, कोई बड़ा बड़ा इन्फ्लुएंस है उसका, या उसके पास प्रॉपर्टी है, उसके पास पैसा है, किसी भी वस्तु का उस समय उस आत्मा को लाभ नहीं हो सकता, सिवाय भगवान का नाम, भगवान का सानिध्य और भगवान के भक्तों का प्रार्थना। और शास्त्र में ऐसा लिखा है कि वो व्यक्ति उस समय, जो व्यक्ति उसके लिए प्रार्थना करता है उसके लिए धन्यवाद करते रहता है, इज कॉन्स्टेंटली थैंकिंग, इज ग्रेटफुल फॉर दोज पीपल हु आर प्रेइंग फॉर हिम। बाकी जो रोते हैं उनके लिए वो भी अच्छा है, वो हृदय का भाव है, लेकिन रोने से थोड़ा उनको कष्ट होता है, उनका जो आगे का रास्ता है उसमें रुकावट पैदा होता है। इसलिए जितना हो सके अपने भावनाओं को बटोर के उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल में और कार में पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे इस यात्रा में पेट्रोल केवल प्रार्थना का है, ओनली वन पेट्रोल, पेट्रोल ऑफ प्रार्थना। प्रार्थना करने से ही उसकी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। इसलिए सबसे बेस्ट सिचुएशन है उनके लिए, सबके लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन है, गौर धाम का वास है, गौर राज्य की प्राप्ति है, गंगा जी का सान्निध्य है, राधा माधव पंचतत्व का सान्निध्य है, गंगा जल मिल रहा है, रज मिल रही है, महाप्रसाद की माला मिल रही है, चरणामृत मिल रहा है। एक और मेरे मन में सुबह आया कि नरसिंह का तेल और नरसिंह का पवित्र वो भी उनको आप डाल दो। अच्छा, पवित्र होगा तो पवित्र, वो क्या उसके बोलते हैं पवित्र, वो लगा दो। तो ये सब कुछ उनके लिए परफेक्ट है। अभी उनके लिए प्रार्थना ये करना है कि उनका ध्यान गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरणों में बना रहे, और इसके लिए आधा घंटे में हमको तुलसी, गंगा जल, चरणामृत जो भी हमारे पास रज, आधा आधा घंटे में उनको देते रहना है, प्रार्थना करना है। और एक भाई और एक प्रेमी भक्त के रूप में उनसे बात करना है कि आप चिंता नहीं करना है, सब कुछ ठीक है, किसी का मन में विचार नहीं करना है, केवल भगवान पर ध्यान करना है और आगे का रास्ता क्लियर है, आप चिंता मत करना, भगवान के धाम में आ गए हैं। इस तरह से जो जा रहा है उस आदमी का धैर्य बढ़ाना है, धीरज देना है उसको। तो हमने कल रात को थोड़ा प्रयास किया उससे बात करने का, उम्मीद है उन्होंने सुन लिया होगा, उम्मीद है थोड़ा उनका उत्साह और हौसला बढ़ गया होगा। तो इस तरह से एंड ऑफ लाइफ केयर जो है ये बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। हम लोग अभी सीखेंगे आगे आगे जाके और अच्छी तरह से करेंगे उसको, और हम लोग बहुत लोगों को एंड ऑफ लाइफ केयर देंगे, भगवान की याद दिलाने का प्रयास करेंगे। तो जब कभी हमारा मौका आएगा तो गौरांग महाप्रभु हमारे लिए भी भक्त लोग भेजेंगे। कहीं प्रदेश में गए होंगे किनारे में, कहीं कोई भक्त नहीं कोई नहीं, फिर भी अचानक भगवान के भक्त वहाँ पर आएंगे, आपको उनकी याद दिलाएंगे और लेके जाएंगे। अरे जिन भक्त लोगों ने जीवन भर दूसरों को एंड ऑफ लाइफ केयर दिया है, हाँ प्रेम से उनका सेवा किया है, भगवान कैसे उनको भूल सकते हैं। इतना लोगों को मरते वक्त उन्होंने सहायता किया तो वो आदमी को भगवान मरते वक्त कैसे भूलेंगे। प्रभु जी बता रहे थे ये एरिया का नाम शिवडोभा है, हाँ भगवान शंकर जी को कृष्ण भगवान का आदेश है गौरांग महाप्रभु का कि जो भी मरेगा उसके कान में हरे कृष्ण मंत्र बोलना है, उसको याद दिलाना है। तो एंड ऑफ लाइफ केयर कैसा है, बहुत पुराना है पौराणिक है, पौराणिक ऐतिहासिक पौराणिक है, वो देवता लोग भी करते आ रहे हैं। गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु भी एंड ऑफ लाइफ केयर करने वाले हैं। कैसे, जो व्यक्ति ने उनके प्रचार कार्य में अपना जीवन दान दिया है, सेवा किया है, वो कहते हैं उनके हृदय के आंगन में दोनों नृत्य करते हैं मरने के समय। वो भूल जाएगा तो भी उसके अंदर हरे कृष्ण का शोर मचेगा कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा उसको, खाली हरे कृष्ण सुनाई पड़ेगा, ऐसा वादा किया उन्होंने। आई विल डांस इन द कोर्टयार्ड ऑफ योर हार्ट चैंटिंग द होली नेम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसलिए ये सेवा करने का मौका मिलना ये भगवान के लिए बड़ी कृपा है हमारे लिए। वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू बी एबल टू सर्व। और ऐसे महान जीवों को जो धामवासी हैं उनको भगवान की याद दिलाने के लिए अगर प्रार्थना करना है तो हमारे पास भी थोड़ा शक्ति होना चाहिए, नहीं तो हमारे की प्रार्थना निकलेगी कैसे बाहर। ये वो कुछ मसल की शक्ति नहीं है डंबल उठा के जो आती है, ये भगवान का नाम लेके हृदय में जो शक्ति होती है ना वही उनको मिलती है। अगर आपके पास नहीं है तो उनको नहीं मिलेगा कुछ, आपके पास है तो मिलेगा उनको। इसलिए जो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं सब लोगों को रेगुलरली अपना जो टैंक है वो फुल करना चाहिए एवरीडे मॉर्निंग। जो हमारा हृदय है भगवान का नाम लेके, भगवान का भजन करके, दर्शन करके, चरणामृत लेके एकदम फुल करके ही आना चाहिए, क्योंकि बीच में किसी को जरूरत पड़ेगा तो फुल होना चाहिए ना, उधर खाली होकर कैसे चलेगा। और अगर डेथ केयर देते हो आप, कभी कभी हमारे हॉस्पिटल में 3-4 घंटा लगते हैं उनके, बहुत लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है, काउंसलिंग करना पड़ता है, बहुत लोग रोते हैं या ये तो ब्रह्मचारी है, अगर गृहस्थ होते तो कितनी औरतें आती, पत्नी सिस्टर ये वो बहू सब आते थे उन लोग, इतना आपको नहीं मिलेगा लेकिन गृहस्थ होंगे तो बहुत सारे लेडीज रोते रहते हैं, उनको काउंसलिंग करना पड़ता है, कोई बेहोश हो जाता है। तो इसमें बहुत शक्ति खर्च होती है और स्पिरिचुअल केयर देने वाला व्यक्ति थक जाता है, इज टायर्ड फिजिकली ऑल्सो, मेंटली ऑल्सो, इमोशनली ऑल्सो, स्पिरिचुअली ऑल्सो, एग्जॉस्टेड। तो हम लोग उनको बोलते हैं आप वॉशअप करके हो सके तो स्नान करके आ जाओ, एक जगह बैठो, ठीक है, जब करो, फिर पेट्रोल भरो, फिर वापस काम पे जाओ। बस वो तो जा रहे हैं, और भी कोई यहाँ पर जिंदा है ना, उनको भी ज़रूरत है सेवा की आपकी। तो यू हैव टू रिज्यूनेट योर सेल्फ, दोबारा उसको आत्मा को पोषण भोजन देके, क्योंकि हमारे पास एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं, सबको देना है, और सबको देना है तो आपके पास होना चाहिए, जब होना तब देना, या तो कैसे देना। तो गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, राधा माधव और शिल प्रभुपाद को, इन सब लोगों को आपसे बड़ी उम्मीद है कि यहाँ पर अभी छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा कार्य आप लोगों से होना है, इसलिए छोटी मोटी बातों से कभी दिल मैला नहीं करना, क्योंकि क्या है ना, माया हमको बहुत कोशिश करती है कि ये मेरा, ये भगवान का सेवा करने को आया क्या, पहला उसको खींचो, पहला पीछे को हटाओ उसको। तो ऐसा कहते हैं कि सबसे बड़ा जो माया का अटैक है वो है भक्तों को सेपरेट करना, यूनिटी ख़त्म करना। सबसे पावरफुल माया का अस्त्र जो है ना, वो आपको भोजन नहीं देके भूखा रखना, गाड़ी में पेट्रोल नहीं रखना, ये नहीं है। रात को नींद नहीं मिलना, मच्छर काटना, ये माया का अटैक ज़्यादा नहीं है। माया का ज़्यादा अटैक क्या है, 2, 4, 10, 15 भक्तों के बीच में दरार डालना, सेपरेट देम, उनका मतभेद नहीं होना, मनभेद भी होना चाहिए, ऐसा माया का कोशिश रहता है। लेकिन जो कार्य हम यहाँ पर करने वाले हैं वो कार्य महान है, इसलिए परीक्षा आती है। अगर कोई आप धंधा करने बैठते ना मटेरियल, तो इतना ज़्यादा कष्ट नहीं आता आपको, उसमें क्या है, वो तो माया के गोद में बैठा है ना, उसमें माया को कोई तकलीफ नहीं है, माया के गोद में बैठा है वो, तो प्रॉब्लम नहीं है। जब वो माया का गोद छोड़ के भगवान के गोद में जा रहा है तो उसको तकलीफ होती है, फिर वो एकदम हड़बड़ा के जगा होता है माया, और जो भी वो कोशिश करता है कैसे भी करके इसको फ्रस्ट्रेट करके भगवान की सेवा से निकाल के वापस मेरी गोद में आना चाहिए। और भक्त लोग सत्संग में बैठकर ये जानते हैं कि ये माया का तरीका है, ये मेरा आपका बैर नहीं है, ये माया देवी ने डाला हुआ विष है बीच में। जैसे कर्ण का और अर्जुन का कोई बैर नहीं था, पैदा किया गया वो माया के द्वारा, उनका क्या संबंध था, वो तो किसी रथी के घर में पैदा हुआ था, मतलब मिला था, वो तो पांडव इधर घर में मिला था, लेकिन माया ने ऐसा साथ में लाया उनको, भाई भाइयों को, कि दुश्मन बना दिया पूरा। एक भाई के हाथ से दूसरा भाई का वध हो गया आगे जाके। कहने का तात्पर्य यह है कि ये छोटी मोटी बातों को हमको भूल जाना चाहिए, क्योंकि तो भक्त लोग होते हैं ना बहुत कीमती होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं। कितने भक्त ऐसे आपको पता है कि जिनको धाम में आकर धाम के वासियों की सेवा प्राप्त होती है, यहाँ पर जो करोड़ ऑफ पीपल आते हैं ना यहाँ पर, वो खाली दर्शन करने आते हैं, दर्शन करते हैं, कथा करते हैं, घूमते हैं, प्रसाद पाते हैं, चले जाते हैं, वो अपना टैंक भरने को आते हैं। लेकिन उसमें से बहुत कम लोग हैं जिनको धाम में धाम की सेवा प्राप्त होती है। जैसे बरसाना में भी मैं यही कहता हूँ, बरसाना में तो कहते हैं कि रोज हर साल 7 करोड़ लोग आते हैं वहाँ पर, 7 करोड़ पीपल को दर्शन करने के लिए, लेकिन केवल 300-400-500 लोगों को वहाँ पर सेवा मिलती है। धाम वास तो हो ही रहा है, धाम दर्शन भी हो रहा है, लेकिन धाम वासियों की और धाम की सेवा भी प्राप्त हो रही है। तो ये जो भाग्य है ना, ये बहुत विरला भाग्य है, ये बहुत गिने चुने लोगों को मिलता है, और उसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, लॉट ऑफ सैक्रिफाइस, उसके बिना नहीं मिलता है। और एक बार धाम का सेवा आपने पकड़ लिया, आपको धाम का सेवा मिल गया और आप कर रहे हैं दिल से, उसको परेशान न होते हुए कर रहे हैं, तो सबसे अधिक गौरांग महाप्रभु कृपा हमको प्राप्त होती है। व्हेन यू रेजिस्ट एंड स्टिल परफॉर्म योर सेवा एंड डोंट गिव अप योर सेवा, तब जाकर गौरांग महाप्रभु सबसे ज्यादा मर्सी जो है वो आपके ऊपर आती है। हमको खाली गौरांग महाप्रभु को दिखाना है कि मैं जानता हूँ माया की ओर से बहुत कष्ट होगा, बहुत कठिनाई आएगी, बहुत समस्या आएगी, हाँ ऐसा बुमरैंग होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, तृणावर्त वैसा घूमेगा, सब कन्फ्यूज कर देगा, क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हृदय का उत्साह जो है ना वैसा हो गया, वो यशोदा माई आ गई, वो देखा तो कृष्ण तो है नहीं, लेकिन क्या चल रहा है समझ में जा रहा है, सब अंधेरा हो गया, सब धुआं उड़ रहा है, किधर क्या हो रहा है, आंख में जा रहा है, इधर जा रहा है, कौन किधर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब ये भी साफ था, पूरा एकदम अनक्लियर हो गया, कंफ्यूजन, कंप्लीट कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन में अच्छे से अच्छा आदमी भी काम नहीं कर सकता है, कितना भी बुद्धि होगा उसके पास, कंफ्यूज हो गया ना एक बार, वो खत्म। तो तुलावर्त आता है माया की तरफ से, कंस की ओर से भेजा था उसको, कंफ्यूज करो सबको, किसी को पता नहीं कौन किधर है, कौन कहाँ है, यशोदा कहाँ है, नंद महाराज किधर है, बाल बाल बच्चे किधर है, कृष्ण कहाँ गया है, कुछ मालूम नहीं है, सब अंधेरा, पूरा एकदम टेंशन। फिर क्या किया, कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण हे गोविंद। तो तुलावर्त को गिराया, एकदम मैदान साफ कर दिया, कृष्ण सामने दिखाई पड़ा, वो कृष्ण भी गुम हो गया था उनके लिए तुलावर्त के प्रभाव से। तो कन्फ्यूजन में क्या होता है, हम सब गौरांग महाप्रभु राधा माधव गंगा जी सब भूल जाते हैं, वही दिखता है हमको खाली, बस वो चल रहा है वही दिखता है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और कृष्ण भगवान वही है, लेकिन वो चक्र में दिखाई नहीं पड़ता, किधर है वो, किधर है गौरांग महाप्रभु, किधर गंगा जी, किधर क्या है, इधर कुछ झगड़ा ही दिखाई पड़ता खाली। जब हे गोविंद हे गौरांगा के पुकारेंगे तो मैदान साफ हो जाएगा, फिर वापस गौरांगा गंगा जी सब दिखाई पड़ेगा कि हम लोग क्यों हैं यहाँ पर, वाई वी आर हियर। तो संकट का आना कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या मिलेगा आपको, इधर करेले के झाड़ पे जाएगा तो क्या क्या उम्मीद है आपके, आम मिलेगा या कटहर मिलेगा, अमरूद मिलेगा मीठा मीठा, नहीं। कटेर करेले के झाड़ पे आप राइट से जाओ, लेफ्ट से जाओ, ऊपर से जाओ, नीचे से जाओ, साइड से जाओ, सब जगह करेला ही मिलेगा, कोई मीठा फल नहीं मिलेगा। वैसे मटेरियल वर्ल्ड के अंदर क्या मिलेगा आपको, ऐसे ही कन्फ्यूजन, ऑफेंस, झगड़ा, मतभेद। और कलयुग में खास करके क्या है, दम्भ और कलह। दम्भ यानी जो हम नहीं है वो हम दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं कितना त्यागी हूँ, मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, जो नहीं है फिर भी दिखाना चाहते हैं, कलयुग का स्वभाव है। और दूसरा स्वभाव क्या है, कलह यानी झगड़ा। अरे छोटी मोटी बात पे ट्रेन में किसी ने पाव रख दिया, झगड़ा, मारा मारी, गाली गलौज, टाइम लगता नहीं झगड़ा करने के लिए, साथ में आने को टाइम लगता है, बहुत बहुत कष्ट करना पड़ता है झगड़ा करने के लिए, एकदम सब फैसिलिटी तैयार है आपके लिए पूरी फैसिलिटी एकदम रेडी है। तो भक्त लोगों को ये पहचानना चाहिए कि ये सब माया का खेल है, हम सेवा करने जा रहे हैं ना, तो सब भक्तों का एकता जो है उसको तोड़ना माया का सबसे बड़ा अस्त्र है, वो तोड़ेगा तो सेवा कैसा होगा फिर, ऐसा है वो। इसलिए अभी देखो प्रभु जी अभी गुजर रहे हैं, कितना महान घटना है मालूम है आपको, एक भक्त वो लोग धाम हमें जाने की तैयारी में, बैग वैग भर के रेडी है अभी, तो कुछ देर की बात है, अभी विष्णु जी तो आएंगे विमान लेकर गौर धाम में ले जाएंगे उसको, कितना बड़ा इवेंट है ये, कितना बड़ा फेस्टिवल है। और समझो आप सब लोग मतभेद में इधर उधर, सबका मूंछ इधर उधर टेढ़ा हो गया, सब झगड़ा करके इधर परेशान हो गए, तो ऐसी सुंदर घटना का लाभ नहीं मिलेगा आपको, इतना बड़ा घटना हो रहा है। तो यहां पर कैसा ना, अनंत भगवान की कृपा है यहां पर, क्योंकि डाउट नहीं है, अनंत कृपा का सागर है ये गौरधाम। और कैसा है, कभी कभी सागर होता है वो बहुत दूर होता है, हम लोग वहां तक पहुंच नहीं सकते, दिखता है वो दूर से ही, वो वृंदावन धाम सागर है, दूर है बहुत। क्यों दूर है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है वहां पर। गौरधाम कैसा है, औदार्य धाम, आप सागर के पास नहीं हो, आप सागर के अंदर ही हो इसका मतलब औदार्य, जो सबसे वैल्यूएबल है ना, वो आपको सबसे कम कीमत में फ्री में दिया जा रहा है। समझो कोई बोलेगा एक किलो गोल्ड आज बटा जाएगा भक्तिवेदांत हॉस्पिटल मायापुर में, कोई चार्ज नहीं, आ जाओ, पहला तो आपको यकीन नहीं होगा, दूसरा मिलेगा तो आप लोग बाप रे इतना सारा सोना फ्री में, अरे बाप रे मेरी लड़की की शादी हो जाएगी इसके अंदर अभी ऐसा गौरधाम है। तो इस गौरधाम के अंदर एक ही चीज है, बाकी सब चीज माफ है, एक ही चीज है, वैष्णवों का अपराध, और वो अगर हो गया तुरंत तुलावर्त जमा हो जाएगा तुरंत, और सारा सागर जो है आपको दिखेगा ही नहीं कुछ, आपको लगेगा सब पत्थर ही पत्थर है तो ये इससे आपको बचना है। छोटा परिवार है हमारा भी, 1993 में चैतन्य पॉलिक्लिनिक था, ऐसे छोटा सा परिवार था, 25 पीपल, और सब लोगों को जानते थे किसका घर में कौन है, क्या क्या है, कितना बच्चा है, किसका एग्जाम है, कौन बीमार है, कौन अच्छा है, एवरीबडी, सब लोग सबको जानते थे। एक परिवार का फीलिंग था, छोटा सा था वो, 3 फ्लैट थे छोटी से, 14 बेड था, एक ऑपरेशन थिएटर था, एक 4-5 OPD था, पैथोलॉजी एक्सरे, एक रिसेप्शन था। और जो वहाँ पर ज्वाइन किए थे वो भी कोई डिवोटी नहीं थे, लेकिन सब लोग डिवोटी बन गए, सब लोग। अभी 750 लोग काम करते हैं, तो मुमकिन नहीं है सबको जानना, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको ये दिन जो है वो आपको याद आएंगे बाद में, कैसा था, कितने से लोग थे छोटे से। मैं प्रभु जी को बोल रहा था कि हमारी ये पहली यात्रा आपको याद आएगा, पहली यात्रा में कौन कौन थे, पहले यज्ञ में कौन कौन थे, ऐसा आपको याद आएगा। तब आपको लगेगा अरे क्या हम लोग मूर्ख लोग थे, क्या आएगा इतना छोटी मोटी बात पे अगर ऐसा मन में लेके बैठते थे। लेकिन आज आप थे उस समय और मैं भी था, यही हमारे बीच में कितना प्रेम का संबंध पैदा करेगा उस समय। तो जब भी आज के समय पर हम लोग उसको अनुभव कर रहे हैं तो इतना वैल्यू नहीं होता है। अभी मैं जब 25 साल पहले फोटो देखा था ना इंडक्शन में, तो मैं भी देखी, अरे वाह माधवानंद को देखो कैसे बच्चे दिख रहे हैं, दर्गेश्वर को देखो कैसे दिख रहे हैं, और देखो वड़ा बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं। वो सोच के भी कितना खुशी और शक्ति प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है। तो आपको पता नहीं होगा लेकिन आपके ये दिन जो है ना ये बहुत ही ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डेज है। यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट नाउ, बहुत ही कीमती दिन है ये जब शुरुआत होती है। अरे जब बड़ा बनेगा तो फिर कौन किसको पहचानेगा, कौन डिपार्टमेंट में रहेगा, कौन हमारे हॉस्पिटल में अभी इतने डॉक्टर नए आते हैं मैं जानता भी नहीं उनको, मुमकिन नहीं इतना सब लोगों को पहचानना, सबका फैमिली हिस्ट्री जानना। कोशिश करते हैं इंडक्शन में सबको मिलके कौन कौन का नाम क्या है, लेकिन इतना याद नहीं रहता। हर महीने 25 लोगों को इंडक्शन देना है तो कैसे लोग याद रखेंगे। तो ये समय जो है ये बहुत वैल्यूएबल है, बहुत आनंद वाला है, बहुत ही आगे जाकर आपको सब मालूम पड़ेगा कि कितना ये आपको सब याद आएगा, कितना संघर्ष हुआ था उस समय, कितना मुश्किल हुआ था, क्या क्या हुआ था, कैसा हमने सामना किया उसका और कैसे आगे लेके गए। और जो लोग शुरू में रहते हैं उनको बहुत कष्ट होता है, सब नया नया होता है, कुछ फैसिलिटी होती नहीं है। जब मैं नया था हॉस्पिटल में तो मैं HR का काम करता था, इंटरव्यू लेता था, भोजन बनाता था कैंटीन में, फार्मेसी संभालता था, लेक्चर देता था, प्रवचन, स्पिरिचुअल केयर, जनरल प्रैक्टिस दिखता था, इतने सारे काम करता था, मल्टीटास्किंग। फिर आदमी बड़ा हो गया तो सब कुछ सेपरेट हो गया, जैसे प्रभु जी कैसे सब कुछ करना पड़ता है, एवरीथिंग। लेकिन आपको इन दिनों की याद आएगी बाद में कि उन दिनों में तो सब कुछ करना पड़ता था, कोई जॉब नहीं था ऐसा कि हमारा यही काम है, तुम्हारा वो काम है। डू द नीडफुल, मतलब क्या, घर में अगर शादी होती किसकी हमारी, तो हम बोलते नहीं है ये प्लेट का उठाना मेरा काम नहीं है, वो सब मेरा ही काम है, ऐसे समझ के सब लोग उठाएंगे, सब लोग करेंगे, एवरीथिंग विल डू। तो ब्राह्मण का लेके क्षत्रिय का लेके वैश्य का लेके शूद्र का सब काम करेंगे, अपना है ना वो। आपको मैंने कोई कहानी बताया क्या, वो लड़के की कहानी बताया, एक साधु पर्वत से नीचे उतर रहा था और एक बहन अपने भाई को कंधे पे लेके पर्वत चढ़ रही थी, तो साधु बोलता है अरे कितना भारी है ना, कितना तकलीफ है ना आपको। तो बहन बोलती है नहीं महाराज वो तो मेरा भाई है ना। तो महाराज बोलते फिर भी कितना भारी है वो, छोटा होगा लेकिन कितना वजन से भारी है, आप पहाड़ चढ़ रहे हो मैं तो उतर रहा हूँ। तो लड़की बोलते नहीं महाराज वो तो मेरा भाई है ना। महाराज बोला भाई हो तो क्या हुआ, वजन तो है ना उसके ऊपर, आपको तो कष्ट तो होता होगा। तो बहन बोलती है नहीं महाराज वो तो मेरा भाई है ना। एक ही लाइन बोल रही हो बार बार, मतलब क्या, प्रेम बता रही है कि आई लव हिम, और क्योंकि मैं उसको प्रेम करती हूँ कोई बोझा नहीं है उसका, कोई वजन नहीं है। वजन है तो आपको दिखता है वजन है, मेरे को वजन नहीं हो तो मेरा भाई है वो, आई लव हिम। वैसे अपनापन होना चाहिए, ये मेरा है, मेरा होगा तो फिर झगड़ा नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा बोलेंगे फिर भी करेंगे उसको पूरा करेंगे, क्योंकि मेरा है ना वो, महाराज जी मेरा है वो, मेरा प्रोजेक्ट है, मेरे को दिया गया है, दिस इज माय प्रोजेक्ट। जब वो ओनरशिप आएगा ना, तब सारा बल आपको आएगा भगवान का, भगवान की शक्ति आपके साथ आएगी, द फोर्स विल बी विथ यू। और ये हमको समझना है। बाकी क्या है, समय के अनुसार अलग अलग तकलीफ आती रहेगी और जाती रहेगी, वो तो आना जाना चलता रहता है किसी का, उसमें क्या बड़ी बात है। जो सबका सामना करके खड़ा रहेगा और बोलेगा यस दिस इज माय प्रोजेक्ट एंड आई विल सर्व गुरु एंड कृष्णा एंड प्लीज देम थ्रू माय प्रोजेक्ट, जिंदगी समाप्त होगी तो प्रोजेक्ट रहेगा नहीं रहेगा अलग बात है, लेकिन हमारी जो सेवा जो है ना वो रहेगी उसके अंदर, सब बाकी सब चेंज हो जाएगा। ये बिल्डिंग बदली होगी, नया बिल्डिंग आएगा शायद, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका जो डेडिकेशन था वो रजिस्टर रहेगा उधर। थिंग्स विल चेंज, आज है कल नहीं, बदली हो जाएगा पूरा, लेकिन आपका जो सेवा है वो हमेशा भगवान के हृदय में रिकॉर्ड रहेगा और भगवान कभी भी नहीं भूलेगा उसको। समय आपको कहां से कहां लेके जाएगा, लेकिन भगवान की कृपा जो है समय जो है बदलता रहेगा, स्थितियां बदलती रहेगी, लेकिन भगवान का भजन और सेवा जो है वो चिरंतन है, इटर्नल है, वो चेंज नहीं हुआ, शाश्वत है वो, शाश्वत, अनचेंजिंग, नित्य। बाकी सब चेंज होगा, अपना शरीर भी चेंज होगा, बाल काले हो सफ़ेद हो जाएंगे, बुढ़ा हो जाएगा, हाथ में डंडा आ जाएगा कुछ देर के बाद, बट हृदय का भाव जो है वो नित्य रहेगा, उसको बनाना है अपने को। तो अभी 10 मिनट बाकी है, कार्तिक का महीना है, भगवान ने, भगवान को यशोदा माई ने बांधा है इस महीने में प्रेम से, जो सब दुनिया को बांधते हैं, दुनिया को जन्म मृत्यु के श्रृंखला में बांध के रखते हैं, उस यशोदा मैया उनको बांध रही है। इतना प्रेम का लीला है, बहुत सुंदर लीला। तो भगवान माखन चुराते हैं, यशोदा माई दंड देती है उनको, बांध देती है, पहले भाग रही है उनके पीछे, भाग रही है भाग रही है, फिर सारे योगी तपस्वी ध्यानी उनके पीछे भागते हैं उनको पकड़ने के लिए, पकड़ नहीं पाते उनको। अरे क्या पकड़ना, क्या उनके नाखून से और हाथ से जो नाखून है उसमें जो अनंत किरण निकलते हैं उसमें से एक किरण भी दिखाई नहीं पड़ता है, फिर भी लोग भाग रहे हैं उनके पीछे, लेकिन नहीं दिखता है उनको। वो जो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण भगवान है उनके पीछे मैया भाग रही है, उसको पकड़ लेती है और बांध भी देती है। तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि वो लोगों को दिखा रहे हैं कि लोग मेरे ऐश्वर्य को देख के उनकी आंखें चौंधिया चपक चमक जाती है, उनको पता होना चाहिए ये ऐश्वर्य वैश्वर्य कुछ नहीं है, प्रेम बड़ा है सबसे। तो प्रेम से भाग रहे हैं, जैसे मैं पकड़ता हूँ अपने आप को, मतलब पकड़ा जाने के लिए उनको मंजूर हो जाता हूँ, बंद भी जाता हूँ, क्योंकि प्रेम है उनके लिए। वो कोई योगी तपस्वी ध्यानी नहीं है, वो प्रेम से बांध रही है। तो वो ऐश्वर्य और मैजेस्टी जो उनका ऐश्वर्य है उससे प्रभावित होने वाले लोगों को कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है, उन पर जो प्रेम करते हैं तो वो सब कुछ छोड़ के उनके घर पे आते हैं, अपना ऐश्वर्य छोड़ के उनके घर पे आते हैं, उनके बन जाते हैं। बाकी दूर से वैकुंठ में क्या, दूर से ही ओम नमो नारायण ऐसा नहीं बोलते, प्रभु चलो गुल्ली डंडा खेलेंगे ऐसा वैकुंठ में जाके बोल नहीं सकते आप। इसलिए सब बाल बाल जो है ना उन्होंने जिद किया भगवान को, एक बार अरे आप वैकुंठ के स्वामी हो, हमने सुना है कि आप बहुत वैकुंठ के स्वामी हो, आपको वैकुंठ दर्शन कराओ, सब लोग वैकुंठ की बात करते हैं, विष्णु की बात करते हैं, आप जरा दर्शन कराओ। उन्होंने बोला आँख बंद करो, आँख बंद किया, फिर सब बाद में बोला आँख खोलो, तो आँख खोला तो वैकुंठ में पहुँच गए, सब वैकुंठ में, इतना बड़ा वैकुंठ कि लक्ष्मी और दूर बैठे सिंहासन पे बहुत सेवा कर रहे हैं उनके, कोई गीत गा रहा है कोई कुछ कर रहा है, और कृष्णा जो है दूर एकदम दूर, बुलाएगा तो सुनाई नहीं पड़ेगा उसको। तो कुछ देर बाद में ग्वाल बालों को घुटन सी होती है, बोले ये तो बहुत अनकंफर्टेबल जगह है। कितना दूर गया कन्हैया, अरे बाप रे वो कौन बैठी है उसके साथ में, कोई रानी दिखती है बहुत बड़ी, इतना सारा कपड़ा पहन कर रखा है, इतना ऐश्वर्य है, बाप रे जूता पहना हुआ है, हाँ इतना चकाचक 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 सा हो रहा है, ये तो सही नहीं है कुछ। वो मन में बोला कन्हैया बस करो अभी बंद करो, तो मन में से आवाज आई, आंख बंद करो। आंख बंद किया, फिर मन में से आवाज, आंख खोलो। आंख खोल दिया तो बाजू में कन्हैया, अच्छा नहीं चाहिए, इसके आगे वैकुंठ की मांग नहीं करेंगे आपसे। ऐसा है, क्योंकि प्रेम है तो बहुत पास में है भगवान, ऐश्वर्य है और कुछ स्वार्थ प्रवृत्ति है बहुत दूर है, अहंकार है और भी बहुत दूर है, और ये तो प्रेम धाम है, प्रेम औदार्य धाम है। यहाँ पर तो सब प्रेम ही प्रेम है। वो श्रीवास ठाकुर वो बोलते हैं, मैं 3 बार ताली बजाता हूँ, और 3 बार ताली बजाने के बाद में अगर कोई नहीं आया भोजन तो मैं गंगा में डूब जाऊँगा पत्थर लगा के मन में। कितना श्रद्धा है उनके मन में, वो भगवान को चिंता है। अरे तुम तो गृहस्थ हो, तुमको पत्नी है, 3 बच्चे हैं, भोजन कहाँ से आता है? कुछ काम तो करते दिखाई पड़ते नहीं हो तुम, कोई नौकरी धंधा, कोई दुकान, कोई बेचता बेचता कुछ है नहीं आपका, कुछ आता किधर से है? ऊपर से भक्त आते हैं नाचते हैं इधर, उनको भी भोजन कराते हो। बोलते हैं मैं 3 बार ताली बजाता हूँ और आ जाता है, भगवान को बता रहे हैं। तो दे रहे हो उसको बता रहे हैं, भगवान अपना उनका जो गौरव है वो लोगों को दिखा रहे हैं, देखो ये मेरा भक्त है। अरे उसके घर में जब कीर्तन हुआ ना तो बच्चा मर गया उसका, और कीर्तन चल रहा है जोरदार, तो श्रीवास ठाकुर को सुनाई पड़ा आवाज, रोने की आवाज। अरे ये सब औरत लोग रो रहे हैं, भाग गया अंदर, बोला चुप रहो सब लोग, कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मुंह बंद करके रो। आवाज नहीं आना चाहिए, सब लोग कुछ बोला। महाप्रभु को लगा कह रहे कुछ गड़बड़ है, तो कीर्तन रोक दिया। बोला क्या होगा, कुछ हुआ इधर? तो श्रीवास बोला कुछ नहीं हुआ, आप कीर्तन करो, कुछ नहीं हुआ। नहीं बताओ क्या हुआ? हाँ महाप्रभु जी, हमारा बच्चा गुजर गया, तो अंदर गए भाग के, वो उसको वापस लाया। उसको बहुत लंबा लीला है, तो जब भी ये लीला हुआ बच्चा वापस जिंदा हो गया, और पूछा कौन से माँ बाप? तो बोलते मेरे बहुत माँ बाप हो गए। और फिर महाप्रभु बोलते कि क्यों आपने मुझे बोला नहीं, क्यों इनको चुपचाप बोलने को, मुझे समझाना चाहिए, मुझे बताना चाहिए था आपको। लीला खत्म हो गया, ऐसा महाप्रभु जी बाजू में आते हैं, उस समय उनके मन में ही वो विचार चलता रहता है कि मैं संन्यास लेना चाहिए, विचार चल रहा है, योजना बन रही है। लेकिन जब उनके मन में ये विचार चल रहा है और देखते हैं श्रीवास के घर में बच्चा गुजर गया, मुझे बताया भी नहीं, साइड में आके बोलते हैं कैसे मैं ऐसे भक्तों को छोड़ के संन्यास ले सकता हूँ, हाउ कैन आई गिव अप कंपनी ऑफ पीपल लाइक श्रीवास, जिसको अपने परिवार की भी परवाह नहीं है मेरे सामने, जिसका जीवन मेरे लिए समर्पित है, कैसे मैं श्रीवास जैसे, वो अकेला नहीं है बहुत ऐसे ऐसे भक्तों का संग मैं कैसे छोड़ के संन्यास ले सकता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन महाप्रभु आस्ट टू हिमसेल्फ, स्वागत, ऐसे भक्त यहाँ पर है, ये तो ऐसा खजाना है कोलवेचा श्रीधर। तो बोलता है ये मनी वनी सब डिस्टर्बेंस है, बोलते हैं वायर डिस्टर्बिंग मी एंड टेम्पटिंग मी। ऐसा कोई बोल सकता है क्या भगवान के सामने? ये महान भक्त है, वो वासुदेव दत्त है, बोलते हैं महाप्रभु सब दुनिया के जितने लोग हैं उनका पाप मुझे दो, वो नरक में उनकी यात्रा भोगूंगा, लेकिन सब लोगों को मुक्त करो महाप्रभु जी, इतना जन्म से तड़प रहे हैं लोग, पाप करके करके सड़ रहे इधर, मुझे दिखाया नहीं जाता उनको, प्लीज महाप्रभु जी इन सब का कर्म मुझे दे दो, मैं अनंत काल तक स्वर्ग में नरक में यातना भोगूंगा, और व्रत इन सब लोगों को आप गोलोक ठीके जाओ। तो महाप्रभु जी रोते हैं, अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुम नरक में जाओगे? क्योंकि वो ऐसा डायलॉग नहीं मार रहे थे पिक्चर का, इसने लिखा है वो ऐसा बोलना है आपको, एक्टिंग करके पूरा आंखों में आंसू लेके बोलना है, ऐसा नहीं कर रहा था वो, हृदय से बोल रहा है वो, ही वॉज रेडी टू गो टू हेल, ऐसा नहीं था कि वो ऐसा ही बोल रहा है करके इंप्रेस करने के लिए महाप्रभु को। तो महाप्रभु ने कहा आपने इच्छा किया है ना, तो सब लोग गोलोक जाएंगे और आप भी साथ जाएंगे, आपको नरक में जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब उनका पाप माफ कर दूंगा। एक प्रहलाद के अवतार वासुदेव दत्त के कृपा से जितने भी अनंत जीव उस समय भौतिक दुनिया में थे, उस जीवन के अंत में गौलोक धाम चले गए। कीड़ा मकोड़ा, हाँ क्या क्या, पंछी, मछली, पेड़, बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी थे सब जीव उस जीवन के अंत में गौलोक धाम पहुंच गए, एक वासुदेव दत्त की इच्छा से। ऐसा कोई भक्त हो सकता है बताओ? प्रहलाद के जीवन में भी इतना करिश्मा नहीं किया जितना उसने गौर लीला में आके करिश्मा किया। प्रहलाद के जीवन में तो कुछ राक्षसों को उन्होंने प्रीचिंग किया, थोड़ा सा डिवोटी बना दिया, लेकिन वासुदेव दत्त के जीवन में पूरा दुनिया को वो होलसेल के अंदर भेज दिया। ऐसे भक्त रहते इधर, एक एक डिवोटी कैसे हैं इधर। वो ईशान इतना सिंपल पानी भरने वाला, इनके घर पे योगपीठ पे बंसी बदन ठाकुर ऐसे सेवक थे एकदम, सिंपल सर्वेंट्स। वो दुखी, कोई नाम नहीं, निशाना नहीं, कुछ नहीं, खाली सेवा। सबको महाप्रभु ने याद किया। तो मतलब क्या हुआ, हम लोग छोटा सा बड़ा सा कुछ सेवा कर रहे हैं, महाप्रभु जी आपको देख रहे हैं कि यू आर डूइंग सर्विस। कभी आपको भूलेंगे नहीं, कभी भी नहीं भूलेंगे। दुखी के तो उम्मीद भी नहीं था कि मेरा नंबर लगेगा। तो कौन हूँ मैं, हु एम आई, क्या मेरा पोजीशन क्या है। लेकिन दुखी को आश्चर्य दिया भगवान ने, धक्का दिया, सबसे पहले उसको बुलाया, क्योंकि मेरे श्रीवास मेरा जी जान है, तो तुम्हारी तुम उसकी सेवा करती हो, तो यू आर मोर डियर टू मी, दास दास अनु दास। इसलिए आपका जो सेवा है वो सब गौरांग महाप्रभु खुद की आंखों से नोट कर रहे हैं सब, कि मेरे धाम में सब लोग सेवा कर रहे हैं। भगवान कभी भूलेगा नहीं आपको लगेगा कि क्या इतना कष्ट हो रहा है, इतनी गर्मी है, इतना झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, पैसा नहीं है, साधन नहीं है, स्टाफ नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, 50 चीज़ें आपको लगेगी, लेकिन आपका छोटा मोटा जो सर्विस है ना वो सब नोट किया जा रहा है। कभी भगवान आपको भूलेंगे नहीं। और जो कष्ट में सेवा करता है वो ज़्यादा भगवान उसको याद करते हैं। अभी आगे जाके सुविधा बढ़ेगी, सब बढ़ेगा, साधन आएगा, तो फिर अच्छा तनख्वाह मिलेगा, इसलिए बहुत लोग ज्वाइन हो जाएंगे, है ना। तो क्या बड़ी बात है उसमें, कभी कुछ नहीं था तभी किसने कष्ट किया, मेहनत किया, तो भाग ज़्यादा नोट करेंगे भगवान। जब डिफिकल्टी है तब आपने किया। जैसे हमारा रवि शिंदे है, रवि शिंदे जगन्नाथपुरी में यात्रा चल रहे थे हमारी, और जगन्नाथपुरी में अचानक एकादशी आ गई। तो जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं होता है, जगन्नाथपुरी में एकादशी करना मना है, एकादशी देवी को उल्टा टांग के रखा है वो भी मंदिर के पीछे उल्टा टांग के रखा है, कोई उपवास उपवास करते नहीं है, 56 भोग खाने का मस्त में और चलने का आ रही। लेकिन महाप्रभु ने संन्यास, महाप्रभु जी ने जगन्नाथपुरी में एकादशी किया है, हम लोग उनके अनुयायी है, तो हमको करना है एकादशी। यात्रा में 200 लोगों का एकादशी के लिए कोई दुकान में कोई कुटू को आटा नहीं, कुछ शब्द नहीं, कुछ है ही नहीं उधर। लेकिन हमने बोला आपको एकादशी तो करना है। अभी कितना मुश्किल है उधर, एक उड़िया उड़ीसा का हमारा स्टाफ है, बोला प्रभु जी ये मुमकिन नहीं है, प्रभु जी नॉट पॉसिबल, बैठ गया वो। रवि शिंदे मराठी बोलने वाला आदमी, उसको उड़िया भी नहीं आता है, बोला कैसा नहीं मिलेगा, कोशिश करते। 26 दुकान में गया, पता नहीं कौन सी भाषा में बात किया, 26 दुकान में गया, 200 आदमी के लिए सामान लेके आया एकादशी का, और ब्रेकफास्ट लंच डिनर पूरा एकादशी खिलाया भक्तों को। मतलब अगर वो बोलता ना प्रभु जी ये उड़िया सा उड़ीमा में भाई एकादशी नहीं होगा प्रभु जी, आप अभी आज हम लोग ना माफ़ करेंगे, सबको अनाज खिला देंगे, तो हम लोग क्या बोलते, ठीक है अभी क्या, बट कैसे नहीं है, अगर ईजी है तो क्या उसमें बड़ी बात है, डिफिकल्ट है तो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको, कभी भूलेगा नहीं उसको। 26 दुकान में गया उड़ीसा में सामान लेके आया पूरा। दैट इज नोटेड बाय कृष्णा कि डिवोटी ने हार नहीं माना, सेवा करना है वो किया। और आज कभी गर्व कभी कि उसका है नहीं कि लोगों को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको अवार्ड मिलना चाहिए, सब जगह बहुत बात करना चाहिए, चलते रहते कंटिन्यूसली। मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ 2 दिन से, ऐसा भक्त होना चाहिए, मतलब वो रहेगा चिंता नहीं होना चाहिए, बस वो रहेगा तो नो चिंता, सब काम हो जाएगा, डिफिकल्ट ईजी सब काम हो जाएंगे। ऐसा हमको सबको बनना है, ऐसा भक्त बनना है कि लोगों को लगना चाहिए कि ये होगा ना मेरे साथ में तो नो टेंशन, एवरीथिंग विल बी डन, सब डिफिकल्टी भी खत्म हो जाएगी और सब काम भी हो जाएंगे। ऐसा हमारा पोजीशन होना चाहिए भक्तों के लिए, भक्तों की सेवा के लिए। वी शुड बी लाइक दैट, वी शुड बिकम दैट काइंड ऑफ प्रेशियस पर्सन, उतना मूल्यवान हमको बनना चाहिए। तो रोने वाले बहुत मिलते हैं ना, क्या प्रभु जी ये नहीं है, वो नहीं है, इधर ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ठीक है धीरे धीरे होगा सब कुछ, लेकिन सेवा करने वाला व्यक्ति को कुछ बाधा नहीं आती, नथिंग कैन स्टॉप हिम, नथिंग कैन स्टॉप हिम, ओनली ही गोज नो हाउ टू गो अहेड, दैट्स ऑल, वॉट एवर हैपन्स। तो ये सब कृपा है। और प्रभुपाद जी के पास क्या था बताओ, ये इंग्लैंड अमेरिका में 70 साल की उम्र में ठंडी में, क्या पैसा नहीं, खाना नहीं, क्या, वो बोलते थे ना कि एक साल कोशिश के आ गया वापस में भी, क्या करेगा, नहीं हो सकता, कोई उसको बोलता नहीं था कि प्रभुपाद जी आप ऐसे कैसे भक्त हैं, मतलब ठीक है बुढ़ा आदमी है वापस आ गया है, बट ही डिडंट गिव अप। गुरु जी ने बोला है मतलब होना ही है, होगा आ रहा धीरे धीरे, लेकिन होना तो है ही, वापस नहीं आएगा। मैं लोगों ने कितना धमकाया था उनको, प्रभु जी थोड़ा जाते वक्त काटा चमचा लेके जाना, थोड़ा ट्रेनिंग लेना कैसे काटे चमचे से खाना है, काटा चमचा यू हैव टू लर्न टू ईट विद देम। वो बोले मैं काटा चमचे से खाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, उनको उंगली से खाने को सिखाने को जा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा उनको डिस्काउंट दे दो, थोड़ा सा नॉनवेज वनवेज खाने को दे दो, कुछ चाय कॉफ़ी चलेगा, मुश्किल है वो, हमने बहुत ट्राई किया है, प्रभुपाद ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जो देना है वही दूंगा मैं, और जो भी कार्य के लिए वो गया हूँ हमें वो देने के लिए गया हूँ, कुछ वहाँ से लेने के लिए नहीं गया मैं, उनका कल्चर लेने के लिए गया नहीं मैं, मेरा कल्चर देने को गया हूँ। मैं कल भी कुछ स्टाफ को यहाँ बता रहा था, इतने विदेशी यहाँ पर आ रहे हैं, देखो आप हमारा कपड़ा पहन रहे हैं, हमारी बिंदी लगा रहे हैं, हमारा पल्लू रहे, बाल को बांध के अंदर मंगल आरती में साड़ी पहन के आ रहे हैं, और हमारे इधर बांग्लादेशी जो बांग्ला के जो इधर रहवासी है नागरिक है वो जीन्स पैंट पहन के गोपीनाथ राधा माधव के मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे, बाल छोड़ के ऐसा सब हीरो स्टाइल मार के आ रहे हैं। मतलब प्रभुपाद जी ने अपना कल्चर उनको दिया, गर्व के साथ दिया, और हम लोग लाचार होके उनका कल्चर स्वीकार कर रहे हैं, देखो कितना लाचारी है, गुलामगिरी बोलते हैं उसको। लेकिन प्रभुपाद जी का निश्चय था, गुरु जी का आज्ञा है मतलब होना ही है, वो टाइम लगेगा लेकिन होना है निश्चित रूप से। आज देख रहे हैं हम लोग इधर मंगल आरती में दर्शन आरती में जाना मतलब एक भाग्य की बात देखने का, अरे ये तो गोरी औरत है, ये तो कैसे रहते हैं उधर वहाँ पर, ये गोरे औरतें आदमी लोग कैसे रहते हैं, यहाँ पर आकर कितने बदल गए। चाइनीज लड़का, चाइनीज छोटा सा लड़का, सर को साफ करके शिखा रख के ऐसा वो है ना कोकोनट का कैसा होता है ऐसा सीखा है उसका लाइट स्ट्रेट ऐसा, रोज मंगल आरती में है उधर, रोज दर्शनार्थी में खड़ा रहते हैं, और एक नहीं कितने रहते हैं ऐसे, किधर का देश में क्या कल्चर उधर, वो चूहा बिल्ली सब सब क्या बोलते हैं उसको, चिपकली और चूहा और मच्छर सब खाते हैं उधर, सांप खाते हैं, बिच्छू खाते हैं, ऐसा देश से लोग आकर यहाँ पर वैष्णव बन के गुरु पूजा कर रहे हैं, बच्चे लोग धोती कुर्ता पहन के अपना कल्चर ले रहे हैं, उनका कुछ कनेक्शन नहीं उसके साथ में, और हम लोग उनके पीछे भाग रहे हैं उनका कल्चर लेने के लिए। तो ये गप गुरु की कृपा होती है ना, गुरु की आज्ञा होती है, सब सफल हो जाता है, पूरा चमत्कार दिखाई पड़ता है सब कुछ, हम उस सब चमत्कार के भागीदार हैं, वी आर ऑल पार्टिसिपेंट्स ऑफ दैट मिरेकल। नहीं तो हम लोग भी ऐसे थे गटर में पड़ने वाले, सब कीड़े थे हम लोग, लेकिन ये चमत्कार किया उन्होंने निश्चय से संकट का सामना करते हुए, इसलिए इस चमत्कार बड़े चमत्कार का हम छोटा सा हिस्सा बने हुए हैं, हमारे लिए मौका है और चमत्कार करने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न पूछना है किसी को, एक प्रश्न पूछ सकते हैं, हाँ पंखा लगा थोड़ा सा अभी थोड़ा हल्का बस। हाँ यस प्रभु जी, जाना चाहिए बीमारी होती है, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ये तो जन्माष्टमी गौर पूर्णिमा से बात कर रहे हैं हम, व्यास पूजा की बात कर रहे हैं, गुरु महाराज की व्यास पूजा है, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट डे है वो, उनको जाके अपना अभिवादन करके आना है उनको। लेकिन उस दिन अगर कोई पेशेंट अगर मर रहा है तो हमारे डिसाइपल जो है वो जाते नहीं व्यास पूजा के अंदर, क्योंकि गुरु महाराज ज़्यादा प्रसन्न किधर हो गए कि मेरे जो सेवा का प्रोजेक्ट बनाया है उसके अंदर किसी को तुम्हारी सेवा की ज़रूरत है तो तुम आके मेरे लिए फूल चढ़ाने से मुझे कैसे प्रसन्नता होगी। सो हमारे हॉस्पिटल में नियम है वो व्यास पूजा के दिन सब माता जी प्रभु जी आएंगे, एक राउंड लेंगे हॉस्पिटल में, वो देखेंगे कौन मर तो नहीं रहा है, किसी का डेथ केयर तो देना नहीं है। अगर सब लोग ओके हैं तो फिर दो बैच में जाएंगे वो, एक हाफ जाएंगे मॉर्निंग में और हाफ पीछे रहेंगे और स्पिरिचुअल केयर देते रहेंगे। फिर वो जो पहले वाले हाफ हैं वो लंच के पहले वापस लौट के आएंगे, लेकिन उनके लिए हम लोग लंच भेजने की व्यवस्था करते हैं महाप्रसाद की। फिर सेकेंड हाफ जो है वो आप बाद में जाते हैं वहाँ पर। सबसे अधिक कृपा जो है ना वो सेवा में है। ठाकुर भक्ति सिद्धांत क्या बोलते थे कि भगवान को देखने की कोशिश मत करना, ऐसा काम करना कि तुमको देखने के लिए वो आ जाए। इसलिए श्रीधर को मिलने के लिए जाते थे उधर कोने में, किधर वो सीमांत द्वीप के जंगल में आए थे, वो कभी आया नहीं इधर घूमने के लिए, किधर है महाप्रभु दर्शन करना है मुझे। महाप्रभु जाते थे वहाँ पर। हरिदास ठाकुर अपने आप को यवन थे ना, वो जन्म से तो बहुत तुच्छ मानते थे, तो मंदिर से दूर एक झोपड़ी बनाया था उसके लिए। सब भक्त लोग आए थे बंगाल से तो ये बोला कि आपके संग में नहीं, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो फर्क बहुत तुच्छ हूँ, मेरे को दूर जरा मेरी छाया भी किस पर पड़नी नहीं चाहिए। तो महाप्रभु ने उनको एक जंगल में जगह दे दिया रहने के लिए, उधर खुद जाके एक झाड़ लगा दिया बकुल का। तो बोलते मैं तो इतना पापी हूँ कि मैं जगन्नाथ का दर्शन करके कैसे, आई कैनॉट गो, मेरी छाया भी पुजारी पर पड़नी नहीं चाहिए, मैं कभी जाऊँगा नहीं उधर। महाप्रभु हर रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करके जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके एवरी सिंगल डे उनको मिलने को जाते थे 3 आवर्स विद हरिदास ठाकुर। यहाँ कैसे 3 आवर्स विद श्रीधर गोलवेचा, किसी को पता नहीं किधर गए। उधर जगन्नाथपुरी में नोबडी नोज वेयर ही हैज गॉन, श्री हरिदास ठाकुर के पास बैठे। ऐसा कार्य करना चाहिए कि भगवान को आपको देखने की इच्छा होनी चाहिए। ऐसा सेवा करो कि वो सेवा के पीछे भाग भाग के आएगा। अच्छा है, टाइम मिलेगा तो जा सकते हैं, उसका योजना बना सकते हैं, ये बैच जा सकते हैं। लेकिन सबको मन में पता होना चाहिए कि मेरे भगवान आज जन्माष्टमी के दिन सबसे अधिक प्रसन्न होंगे अगर वो मुझे सेवा करते हुए देखेंगे आज के दिन में। द मोस्ट प्लेजर विल बी दैट टाइम, ये श्रद्धा होनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है प्रभु जी, श्रद्धा मन में पैदा होना ना कि आई विल लाइक टू सर्व टुडे, एनी सर्विस इज देयर वो मेरा भाग्य होगा आज करने के लिए। और नहीं होगा दर्शन को जाओ, अभिषेक को जाओ, टर्न बाय टर्न सब कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन सेवा आया ड्रॉप एवरीथिंग एंड डू इट। ये सब शुरू शुरू में हॉस्पिटल में बहुत सारा क्या मंथन हुआ इस सब चीज़ के लिए। अर्ली डेज में कैसा करना है, क्या करना है, यात्रा आ रही है, दीक्षा आ रही है, व्यास पूजा आ रही है, ऐसा आ रहा है, वैसा हो रहा है, सबको जाना है। लेकिन धीरे धीरे सबको समझाया कि अल्टीमेटली ना जब करते हैं हम लोग चार नियम पालन करते हैं, सब कुछ करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, अल्टीमेटली अभिलाषा क्या करते हैं, हरे कृष्णा मंत्र बोलते वक्त मांगते क्या है, प्रभु सेवा दो, एंगेज मी इन योर सर्विस। तभी समझ में आता है कि हम लोग क्या मांग रहे हैं, और सेवा आ रही है और सेवा छोड़ के हम लोग भाग रहे हैं, मतलब हमारा कुछ गड़बड़ है, हमारे मांगने में और समझने में गड़बड़ है। मांग कुछ रहे हैं और आ रहा है और हम लोग और कुछ कर रहे हैं। तो फाइनली जब चार नियम पालन करके सेवा जपा करके सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसके फल के रूप में जब सेवा मिल रही है आपको, तो वो सेवा करना जो है सबसे बड़ी प्राप्ति है जीवन की। द हाइएस्ट अचीवमेंट इज दैट सर्विस जो हमको भगवान से जोड़ के रखती है, भगवान कभी जुदा नहीं होते उस सेवा के माध्यम से। इसलिए इसका सिंपल आंसर यही है। हमारे सेवा अधिकारी से जो हमको सेवा मिलती है वो प्रोजेक्ट के लिए सबसे बढ़िया रहती है, चाहे मुझे पसंद में आ जाए नहीं आ जाए, और अगर मुझे कुछ और करना है तो वो पूरा करके उसके बाद में करना है, एक्स्ट्रा में करना है, दिल से करना है बाद में जाके, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। जैसे प्रभु जी अभी जा रहे हैं, है ना, इन प्रभु जी को एक्सपीरियंस है उधर का, तो वो उधर से आके थोड़ा टाइम देना चाहिए क्योंकि उनको मालूम है एग्जैक्टली कैसे करना है। तो अपने पास रिसोर्स हैं तो वो, लेकिन आप लोगों के हाथ में है कभी उनको बुलाना है, कैसे रिलीव करना है और यहाँ पर उनको सेवा देने को बुलाना है। लेकिन जहाँ तक उनका सवाल है, उनको वही करना है जो बताया गया है। अल्टीमेटली व्हाट इज बीन टोल्ड इज टू बी डन। बिल्कुल, जब तक वो सेवा हमारे हाथ में है, जो हॉस्पिटल में स्पिरिचुअल केयर में पूरा कैंसर का दिया था, यहाँ पर फार्मेसी का दिया है, कल उठ के और कुछ मैनेजर का सेवा देंगे और कुछ सेवा देंगे, बदले हो सकता है, हमारा भी बदले बदले होते गया। लेकिन जिस वक्त जो दिया गया है वही हमारा भगवान का मिलन का साधन है, दैट इज द ओनली मीन्स बाय विच वी मीट कृष्णा। कुछ नहीं, कैसा है, जैसे जप करने में एकाग्रता होना चाहिए कि नहीं, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, कॉन्सेंट्रेशन। सेवा में भी ऐसा ही है, एक सेवा करते हुए ये क्यों नहीं कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सेवा दी है उस पर दिल लगाना है, जो सेवा बदली करेंगे तो उस पर दिल लगाना है। सेवा का जो बाह्य स्वरूप है उस पर दिल लगाना नहीं है, सेवा का जो सार है उस पर दिल लगाना है। सेवा बदली बदली होती जाएगी कुछ समय के बाद में, लेकिन सेवा भाव जो है वो कायम रहना चाहिए। प्रभुपाद जी को किधर, जब वो बोट में बैठे थे बोल रहे, अरे मेरे गुरु भाई सब लोग अभी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते होंगे, हाँ बंगाल में सब लोग अभी जन्माष्टमी करते होंगे। तो बाद में एक साल गुजर गया उनका, तो सोचते थे कि मेरे बंगाल में अभी गुरु महाराज के मंदिर में सब भक्त लोग अभी राधाष्टमी जन्माष्टमी रथ यात्रा सब करते होंगे, मैं यहाँ पर अकेला हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कुछ प्रचार करने का, पैसा नहीं है कुछ नहीं। याद करने में कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन सेवा छोड़ के भाग नहीं गए, जन्माष्टमी करके वापस लौट के आता हूँ ऐसा नहीं किया उन्होंने ऐसा होता है। और गुरु महाराज कभी आपसे नाराज नहीं होंगे, अगर आपकी जगह पर बैठ के आप सेवा कर रहे हो, गुरु महाराज सब जानते हैं, वो पूछेंगे नहीं क्या प्रभु जी जन्माष्टमी नहीं आए आप, क्या माया में थे क्या, ऐसा नहीं बोलेंगे आपको आगे वो जानते हैं हृदय से मेरा भक्त का भाव क्या है, वो समझते हैं बड़ा। गुरु महाराज का ऐसा चेतना होता है कि शिष्य का पूरा चेतना को समझते हो, क्या उसका भाव है, हृदय में क्या चल रहा है बराबर समझते हो। तो हमारा काम क्या है, जो सेवा दिया है उसको दिल लगा के करना, और उसके फल में क्या कुछ, अभी तक हमारी यात्रा के होता है मैनेजर लोगों, उनको इतनी मेहनत करते हैं वो लोग, इतनी मेहनत करते हैं यात्रा के लिए, 6-6 महीना मेहनत करते हैं वो, बुकिंग करने के लिए, गाड़ी के लिए, भोजन की व्यवस्था करने के लिए, पैसा इकट्ठा करना है, नाम लेना है, लिस्ट बनाना है, ये वो कम्युनिकेट करना है, फ़ोन करना है, ऐसा वैसा पत्रक निकालना है। और यात्रा में क्या होता है, एक भी दर्शन एक भी कथा उनको नहीं मिलता है, एक भी प्रसाद ठीक से खाने को नहीं मिलता है, भाग रहे हर समय पे, इतने थकते हैं, लोग सो रहे हैं आके आराम से, ये लोग अगले दिन की तैयारी कर रहे हैं, लोग कथा सुन रहे हैं तो ये अगले प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उनको मिलेंगे ना आप, सबसे ज़्यादा ब्लिसफुल वही लोग रहते हैं क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं, सेवा का लाभ को ध्यान में रख के नहीं कर रहे हैं कि अभी मैं तो कम से कम जगन्नाथपुरी का मैनेजर बन के जा रहा हूँ, कुछ दर्शन तो होगा मेरे को ना, कुछ ना कुछ तो स्नान करने को मिलेगा, कुछ महाप्रसाद तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो स्वार्थ मन में रहता ही अपना। लेकिन उनके मन में कुछ स्वार्थ नहीं रहता, निस्वार्थ रूप से करते रहते हैं, नो अपेक्षा, कोई अपेक्षा नहीं रखते कि हमको ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा। फिर बाद में हम लोग एक दिन उनको अलग से दर्शन करा के लेके आते हैं। गोपीनाथ जी की भी यात्रा जाएगी हम्पी में और उडुपी में, 150 लोग किचन में काम करते हैं डे एंड नाइट, 2:00 से लेके रात को 8:30 तक, 9:00 तक किचन में रहते हैं। उनको ना कुछ कथा है, ना दर्शन है, ना कुछ नहीं उनके लिए, खाली वही रगड़ना है बस। तो गुरु महाराज ने उनको बताया सबको कि यात्रा शुरू होने के पहले उनको 2 दिन सब जगह दर्शन करा के लेके आना है, फिर आगे के 10 दिन वो चौखट के बाहर निकलेंगे नहीं, उनके लिए वही है गैस चूल्हा मशीन सब्जी और यही है बस। 2:00 से ब्रेकफास्ट चालू, 7:00 सर्विस, 11:00 डिनर लंच रेडी, 7:00 डिनर रेडी, यही उनका गिनना काम रहता है दिन भर गौरांग प्रभु और उनका टीम का। नो अपेक्षा कि मुझे दर्शन मिलेगा गुरु महाराज का, गुरु आके बोलेंगे थैंक यू प्रभु आपने कुछ देखा नहीं सब कुछ हमारा इतना सेवा किया, कुछ अपेक्षा नहीं है, थैंक यू की भी अपेक्षा नहीं है, सेवा में ही सबसे बड़ा आनंद है उनको, सेवा मिल रही है वही सबसे बड़ी आनंद है कि हमको चुना उन्होंने सेवा करने के लिए, इतना बड़ा काम हमको दिया। तो हम लोग सेवा करते वक्त हमेशा कुछ ना कुछ अपेक्षा करते रहते, सम रिवॉर्ड वी वॉन्ट, बट रियल सेवा वो है कि वो सेवा के लिए ही सेवा करना है और सेवा ही उनका आनंद है, दैट इज रियल सर्विस। फिर कष्ट होगा नहीं होगा, आनंद होगा नहीं होगा, वो सब ठीक है, इट्स ऑल राइट। आनंद के लिए सेवा करना भी अच्छा नहीं है, सेवा के लिए सेवा करना चाहिए, बस ओनली फॉर प्लेजर ऑफ गुरु महाराज एंड नथिंग एल्स। ऑफकोर्स ये तो आइडियल है, हम लोग शायद आइडियल नहीं होंगे, लेकिन आइडियल तक पहुंचने का हमको प्रयास तो करना है ना, और कम से कम आइडियल जानना तो है कि आइडियल क्या है। तो यू शुड नो द आइडियल एंड देन ट्राई टू रीच द आइडियल, ट्राई योर बेस्ट। और जो आइडियल नहीं है उनको कंडेम मत करो, उनको वो देखो कैसा है, तुम कैसे हो, ऐसा मत बोलना। क्योंकि कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का है, 10 साल का आदमी 2 किलो उठाएगा, 20 साल का आदमी 50 किलो उठाएगा, तो उसका कैपेसिटी है वो, तो किसी का कैपेसिटी कम है इसलिए उसको कोसना नहीं है कभी, उसको एनकरेज करना है। हम लोग कैसे करते हैं, बच्चे को गाली देते नहीं है, एनकरेज करते हैं, धीरे 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 उठाएगा सामान, धीरे धीरे उठाएगा। वैसे लीडर कैसा होता है, वो कभी भी सबसे जो अच्छा आदमी है, कैपेबल आदमी है, उसका गौरव करना, और जो कैपेबल नहीं है उसको कोसते रहना, इज नॉट अ गुड लीडर। वो जो कैपेबल है उसको भी एनकरेज करेगा, जो नहीं है उसको भी एनकरेज करेगा। अगर उसका 10% है तो 15% कैसे करूँ उसके लिए कोशिश करेगा, जो 95% है उसको 98% कैसे करूँ वो कोशिश करते रहेगा। एनकरेज एवरीबडी, सबको सबको आगे बढ़ना है, कोई 10% पे है, कोई 20% पे है, कोई 50% पे है, सब लोग इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 10% तो कर रहे हैं ना, दुनिया के लोग 10% नहीं कर रहे हैं, बाहर के लोग है ना 10% भी नहीं कर रहे, वो तो पुल माया में है, ये तो 10% तो कर रहा है। एनकरेज हिम 15% के लिए, 20% के लिए। किसी को थैंक यू बोलना भूलना नहीं, से थैंक यू टू एवरीबडी, एवरीबडी इज थैंकेबल पर्सनैलिटी हियर, दे हैव लेफ्ट एवरीथिंग एंड कम हियर टू सर्व कृष्णा एंड गौरांग महाप्रभु। तो थैंक यू तो करने के योग्य सब लोग है ही, ठीक है। गौरांग महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की।